नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। ये गजब बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों को काउंट कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक जनसभा में जहरीला सांप कह दिया, जिससे नरेंद्र मोदी घायल दिखलाई दिए। इसी तरह मीडिया अरविंद केजरीवाल को घायल समझकर हल्ला बना रहा है, और इतना घायल कर दिया कि केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा होगा कि वे करें तो क्या करें। इसलिए अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार विचार का शीर्षक है, मोदी अधिक घायल या केजरीवाल। शनिवार को कर्नाटक की एक जनसभा में नरेंद्र मोदी घायल दिखलाई दिए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जहरीला सांप कहे जाने पर जनसभा में अपनी गिनती बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनको 91 बार गाली दी है। सोचे वे नरेंद्र मोदी गालियों की काउंटिंग करते हुए हैं, जिन्होंने 2014 से अब तक के 9 वर्षों में भारत को गालियों की खरपतवार बनवाया है। शायद 2014 के ही चुनाव प्रचार की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा और साल भर बाद 2015 में दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नक्सली आदि न जाने क्या क्या कहा। उनके राज में शायद ही देश का कोई विरोधी स्वतंत्र चेता दिमागदार नेता या व्यक्ति हो जिसे सत्ता के श्रीमुख से, उसकी आईटी सेल और सोशल मीडिया व प्रवक्ताओं से गालियां नहीं मिली हों, लोग ट्रोल नहीं हुए हों। जर्सी गाय, स्वप्नखा, पप्पू, भ्रष्ट, दलाल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी आदि की गालियों से न केवल सत्तावान नेताओं, उनके गुलाम टीवी चैनलों, सोशल मीडिया ने जहां विरोधियों को व्यक्तिगत तौर पर बदनाम किया, वहीं समाज के अलग अलग समुदायों, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसानों, वैश्विक चेहरों, संस्थाओं को भी इतनी किस्म की गालियां दी या दिलाई गई कि हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 100वीं मन की बात में भारतीयों में यह गौरव भरना था कि उन्होंने मौलिकता से भारत को विश्व का सिरमौर गाली प्रधान, जुमला प्रधान, झूठ प्रधान बनाया है। क्या मैं गलत हूँ? बावजूद इसके और गजब बात जो प्रधानमंत्री गालियों को काउंट करते हुए भी, कल 91 की काउंटिंग और रविवार को जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी चुनाव में उन्हें 100 गालियां दे देगी। सो कांग्रेस को सावधान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब श्री कृष्ण की तरह उंगली में सुदर्शन चक्र लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कब 100 गालियों की संख्या पूरी करे और वे अपने सुदर्शन चक्र से कांग्रेस का सिर वैसे ही धड़ से अलग करें जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का किया था। वे कांग्रेस की मान्यता खत्म करने की ताकत रखते हैं तो खड़गे, राहुल, प्रियंका, सोनिया सबको ईडी सीबीआई से जेल में डालकर जुबान बंद करा सकते हैं। आखिर वे भक्त हिंदुओं के भगवान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को और कमाल किया। कर्नाटक की जनसभा में कहा, भाइयों और बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना। सोचें, वे जनता की तरफ से सांप हो गए हैं, उस जनता के जिसने सुना हुआ है भक्तों के मुंह से हर हर मोदी, घर घर मोदी का राग। जो नाग देवता को दूध पिलाना धर्म मानते हैं तो वे हर हर मोदी को वोट देने में क्यों संकोच करेंगे? मतलब किसी भी रूप में गालियों की खर पतवार से वोट की फसल पकाने की कला दुनिया को यदि किसी से सीखनी चाहिए तो भारत की हिंदू राजनीति से सीखनी चाहिए। सचमुच भारत में राजनीति और सार्वजनिक नेतृत्व और विमर्श में संस्कार, सत्य, विवेक और मनुष्यता की समाप्ति के पिछले 100 महीनों के अनुभवों की जो दास्तां है, वह आज़ादी के 75 वर्षों की वह अनहोनी है जिस पर जितनी चर्चा की जाए कम होगी। तभी एक मायने में 140 करोड़ आबादी के भारत में भक्त 40-50 करोड़ हिंदुओं के अलावा बाकी सब लोगों पर मोदी जी का बस चले तो सुदर्शन चक्र चला दें, क्योंकि ये लोग शिशुपाल की तरह मोदी जी को कोसते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ये मोदी विरोधी, राजद्रोही, देशद्रोही, हिंदू द्रोही हैं। ये नरेंद्र मोदी के महल पर कमेंट के पत्थर फेंकते हैं, आंदोलन विरोध करते हैं और मोदी काउंटिंग करते हैं। इस वाक्य पर गौर करें कि कांग्रेस ने उनको 91 बार गाली दी है, तभी मैं उन्हें घायल हुआ बूझ रहा हूँ। उनकी घायल दशा से अरविंद केजरीवाल की तुलना कर रहा हूँ। सत्य है राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी अडानी का पुराण पढ़कर, केजरीवाल ने विधानसभा में अनपढ़ भ्रष्ट राजा की कथा सुनाकर और सत्यपाल मलिक ने पुलवामा में खून से रंगे हाथ दिखलाकर मोदी जी को घायल किया है। तभी गहराई से सोचे कि पिछले 4 महीनों में नरेंद्र मोदी मानसिक तौर पर कितने घायल हुए होंगे। छोड़े इस बात को कि वे घायल तो देश घायल, दिल्ली के देवता केजरीवाल घायल हैं तो वे तमाम लोकल देवता भी, जो CBI, ED, इनकम टैक्स आदि से दिन रात सपरिवार अपमान में लहूलुहान हैं। तो सार क्या, सबसे बड़ी असल बात कि एब्सोल्यूट पावर के सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी घायल हैं, और इतने घायल जो दिन प्रतिदिन गालियों की काउंटिंग कर रहे हैं। क्या ऐसा पहले पिछले 75 वर्षों के इतिहास में कब किस प्रधानमंत्री के साथ हुआ था? कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री गालियां काउंट करते हुए अपने को घायल बता रहे हैं, जबकि देश का मीडिया अरविंद केजरीवाल को घायल बूझ हल्ला बना रहा है कि यो तो गयो। घायल प्रधानमंत्री के हेडलाइन से ध्यान बंटवाने के लिए सबने मिलकर केजरीवाल को इतना घायल कर दिया कि उन्हें भी शायद अब समझ आ रहा हो कि अब वो करे तो क्या करें। मैं नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को समतुल्य मानता रहा हूँ। हिंदू राजनीति के वक्त की यह वह राम मिलाई जोड़ी है जिसके पीछे का सर्वकालिक सत्य है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को संपूर्ण भ्रष्ट बनाती है। भारत का दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में भारत सांप सपेरों के अंधकार, सांप नेवले के खेल की सियासत का जंगल बना। क्या सोचा था और क्या हुआ? सामान्य परिवार के सहज हिंदू नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को क्या गजब अवसर मिला, दोनों परिस्थितियों की देन। कैसे ये लोगों की उम्मीदों ख्यालों के सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, नई व्यवस्था अच्छे दिनों को लिवा लाने वाले विजनरी महानायक, दोनों मध्यवर्गी और बनिया, दोनों राष्ट्रवादी, और दोनों से अनुभव क्या। एक सत्ता मिलते ही नेम प्रिंट वाले सूट को पहनकर दुनिया को दिखलाते हुए कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे भारत का विश्वगुरु प्रधानमंत्री। ऐसा महंगा सूट जो नीलामी में करोड़ों रुपए में बिका, अरबों रुपए की लागत के नए विमान से लेकर अरबों रुपए के खर्च पर नए दफ्तर, नए प्रधानमंत्री आवास की भव्यता से अपने मंदिर बनवाते हुए तो दूसरे ने वह मुख्यमंत्री आवास बनाया जिसके बारे में मैंने सुना कि पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 1 करोड़ रुपए के टीवी सेट और घर की साज सज्जा का कुल खर्चा 45 करोड़ रुपए। तो मुझे भी भरोसा नहीं हुआ कि केजरीवाल को भला शानो शौकत की इतनी ललक। हाँ, अरविंद केजरीवाल पावर में आने से पहले नरेंद्र मोदी के मुकाबले सचमुच आम आदमी थे। नरेंद्र मोदी तो अमीर गुजरात में मुख्यमंत्री रहते खूब सत्ता भोगे हुए थे। उनके लिए अडानी का विमान हवाई अड्डे पर खड़ा रहता था। अमीर गुजरात की राजनीति की अमीरी से देश जीता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो दिल्ली की सर्दियों में मफलर पहने ठिठुरते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ राजनीति शुरू हुई थी। वे सादगी के प्रतीक थे। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था तो चुनाव चिन्ह झाड़ू। वही केजरीवाल सत्ता में बैठने के बाद 45 करोड़ रुपए की साज सज्जा के घर में। मामला रहस्यमयी है कि सत्ता कैसे व्यक्ति को तुरंत इतना भोगी बना देती है। गुलामी में पके रचे हिंदू मिजाज और इतिहास में मेरी पुरानी थीसिस है कि सत्ता की भूख और सत्ता से भयाकुलता का हिंदू स्वभाव बेजोड़ है। उस नाते नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने पावर को जैसे भोगा है या भोग रहे हैं वह सामान्य बात है। फिर भी केजरीवाल का मामला चौंकाता है कि कैसे हैं हम हिंदू, सत्ता के वैभव का दिखलाने का ऐसा पागलपन। हिसाब से केजरीवाल चतुर हैं, पर आश्चर्य जो ये नहीं बूझे कि नरेंद्र मोदी और उनका तंत्र उनके एक एक पल पर नजर रखे हुए है। केजरीवाल को समझना था कि वे जो मुख्यमंत्री आवास बना रहे हैं तो उसके खर्च पर नजर होगी। जाहिर है केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को कमतर आंका। नतीजतन अब चारों खाने चित घायल पड़े हुए हैं। दिल्ली के घर मोहल्लों के पार्क की चर्चा हो या घरों के बैठक खाने की चकचक या झुग्गी झोपड़ी से आई हेल्पर, सब केजरीवाल के घर खर्च की चर्चा करते हुए। देश में इतनी चर्चा अंबानी के घर की नहीं हुई जितनी अरविंद केजरीवाल की घर की चर्चा होते हुए है। सोचे मोदी भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को कैसा धोबीपाट मारा है। उनका अडानी अनपढ़ पुराण खत्म और उसकी जगह केजरीवाल के पर्दों पर लोग चटखारे लेते हुए। मोदी शाही के टीवी मीडिया, सोशल मीडिया के शेषनागों से पहले तो बेचारे शराब घोटाले के डंक झेलते हुए और अब केजरीवाल को ऐसे डसते हुए हैं कि यह लोक मुहावरा सही साबित होता हुआ कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। केजरीवाल सफाई दे भी तो क्या दे। कल्पना करें इस घायल अवस्था के बाद केजरीवाल को मोदी जब सीबीआई ईडी से जेल में डलवाएंगे तो उनका और उनकी पार्टी व सरकारों का क्या होगा। मगर मैं मानता हूं केजरीवाल और मोदी की राम मिलाई जोड़ी है। दोनों डाल डाल पात पात के चतुर खिलाड़ी हैं। पता नहीं कितने पाठकों ने सांप नेवले का खेल देखा हो। मैंने देखा है 60-70 के दशक के बचपन में मदारी लोग डमरू बजाकर सड़कों पर सांप नेवले की लड़ाई दिखलाया करते थे। सांप फुफकारता हुआ डसता था तो दर्शकों की कपकपी छूटती थी, मगर नेवला हार नहीं मानता था। लड़ाई में कभी सांप का पलड़ा भारी होता तो कभी नेवले का, दोनों लहूलुहान हो जाते। मदारी खेल को आगे नहीं बढ़ने देता था, लेकिन मान्यता है कि ज्यादातर लड़ाइयों में नेवला सांप को मार देता है, बशर्ते कि सांप कोबरा न हो। सो पाठक माई बाप, आनंद लीजिए आजादी पूर्व की भारत पहचान के सांप सपेरो सांप नेवले लड़ाई के लाइव शो का। मगर हाँ, कथित अमृतकाल में सांप सपेरो सांप नेवलो 100 गालियां 1000 गालियां संसद विधानसभा और घर घर गालियों का आनंद लेते हुए यह जरूर सोचिए कि हमारी विश्वगुरुता कितनी अनहोनी है। बहरहाल ये एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।